हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, बताएंगे? रूहान ने अनाही की आंखों के आगे अपना हाथ लगा रखा था, जिसे अनाही को सामने दिखाई नहीं दे रहा था कि रूहान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद रूहान ने धीरे से उसकी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए कहा, बस मैं आपके यहाँ लेकर आ रहा था मैडम जी। अनाही ने जैसे ही सामने देखा उसकी आंखें फैल गईं। बैकयार्ड में कदम रखते ही अनाही के पैर जैसे वहीं ठहर गए। चारों तरफ हल्की हल्की पीली लाइट्स टिमटिमा रही थीं, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और सामने सजा हुआ वो छोटा सा कोना बिल्कुल किसी सपने जैसा। अनाही की नज़रें पहले टेबल पर रखे छोटे से केक पर गईं, फिर लाइटिंग पर, फिर उस सफ़ेद फ्यूरी वाली चादर पर और आखिर में रूहान पर, जो उसकी तरफ देखने से भी डर रहा था। ये अनाही के होठों से बस इतना ही निकल पाया। रूहान ने हल्की सी हंसी के साथ गर्दन खुजाते हुए कहा, वो पार्टी में तो सब थे ना, शोर था, मुझे लगा आपकी दिवाली कुछ स्पेशल होनी चाहिए, सिर्फ आपकी। अनाही की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इतने शोर शराबे के बाद ये शांति, ये एहसास, सब कुछ दिल को छू रहा था। उसने मुंह पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा, रूहान जी ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई थी। रूहान घबरा गया, अरे नहीं नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो? अनाही ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं ये बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि मुझे रोना आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए आंखों से आंसू पोंछने लगी। रूहान की सारी नर्वसनेस जैसे उसी पल गायब हो गई। उसके चेहरे पर वो सुकून वाली मुस्कान आ गई जो सिर्फ अनाही के सामने आती थी। उसने एक उम्मीद के साथ थोड़ा डरते डरते अनाही से पूछा, तो ये आपको पसंद आया मैडम जी? अनाही ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया और फिर धीमे कदमों से जाकर रूहान की गई डेकोरेशन को अपने हाथ से छूकर देखने लगी। ये सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। रूहान ने टेबल पर जो कैंडल रख रखी थी उन्हें देखकर अनाही को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ये भी आपने बनाई है? क्योंकि उन कैंडल की शेप परफेक्ट नहीं थी और ऐसे इम्परफेक्ट काम सिर्फ और सिर्फ रूहान ही कर सकता है। रूहान ने कैंडल्स की तरफ देखा और फिर हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ खुद बनाई है, यूट्यूब पर वीडियो देखा था लेकिन मुंह मेरी बात ही नहीं मान रहा था। रूहान यहाँ झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने निवेदिता को देखा था कि वो कैसे राव्या और अनाही को मोमबत्तियाँ बनाना सिखा रही थी और इस वक्त उसने भी चुपके से ये सब बनाना सीख लिया था। अनाही को कहीं ना कहीं पता था कि रूहान उसे झूठ बोल रहा था लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना रूहान जी परफेक्ट चीज़ें बनाना आपके बस की बात ही नहीं है। ये सुनकर रूहान ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? अनाही ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मतलब आप जो बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होता पर उसमें दिल बहुत होता है। ये सुनकर रूहान कुछ पल चुप रह गया। वो बस अनाही को देखता रहा, उसकी चमकती आँखें, हल्की सी भीगी पलकें और वो मुस्कान जो शायद इस पूरी शाम का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। अनाही धीरे धीरे उस सफ़ेद फ्यूरी वाली चादर पर बैठ गई। आपको पता है, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज की दिवाली शोर वाली नहीं थी, आज की दिवाली सुकून वाली थी। रूहान भी उसके पास बैठ गया। अनाही ने आहिस्ता से रूहान के कंधे पर अपना सिर रखा और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, चौहान जी आप मुझे इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं, जबकि मैं तो आपके लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। रूहान ने गहरी सांस भरी और फिर खुले आसमान को देखते हुए बोला, आपको पता है मैडम जी मुझे क्या लगता है, जैसे सब बोलते हैं ना दिल में अलग अलग कॉर्नर होते हैं सबके लिए, मुझे लगता था मेरे दिल में कोई कॉर्नर नहीं है क्योंकि मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता, ना ही किसी के लिए एक जैसा प्यार महसूस होता है। पर अब लगता है जैसे जी कॉर्नर में हम भगवान की पूजा करते हैं वहाँ मैं आपको रखता हूँ, मुझे कोई भी परेशानी हो सबसे पहले आप मुझे याद आते हो, जैसे सबको भगवान याद आते हैं। अनाही ने झट से आँखें खोल ली और फिर चौहान के कंधे से अपना सिर हटाते हुए हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। अनाही को रूहान के ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, तो वही रूहान बार बार पलकें झुकते हुए अनाही के चेहरे को देख रहा था जैसे पता नहीं वो कितना ज्यादा सीरियस हो। अनाही ने अपने गले को तार करते हुए धीरे से कहा, क्या ये सच है, आप मुझे भगवान का दर्जा देते हो? रूहान ने दो बार हाँ में सिर हिलाया और फिर आगे बढ़कर अनाही के माथे को चूमते हुए बोला, हाँ मैंने जो जो डेफिनेशन भगवान के लिए सुनी है उसमें आप बिल्कुल फिट आते हो, बाकी कोई नहीं। ये सुनकर अनाही की आंखें भर आईं और उसने झट से रूहान को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अनंत के कमरे में राविया अब अनंत को किस करके थक चुकी थी, इसलिए वो उससे अलग हो चुकी थी। अनंत अब उम्मीद से उसके चेहरे को देख रहा था। अब उसे राविया की ये बचकानी हरकतें बहुत अच्छी लग रही थी और वो चाहता था राविया बस ऐसा करती ही रहे। राविया ने जल्दी से अपने हाथों को अनंत के हाथ पर रखते हुए कहा, आपको पता है मैंने मेहंदी में आपका नाम लिखा था। हर लड़की सुहागरात के दिन चाहती है कि उसका पति उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढे, पर मैं तो अपनी शादी में मेहंदी भी नहीं लगा पाई, इसलिए मैं कल जब दिवाली की मेहंदी लगाई थी तब आपका नाम लिखा था। इसमें क्या आप ढूंढ सकते हैं अपना नाम? फिर राविया ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी मिस्टर निमानी। अनंत ने हैरानी से राविया के चेहरे को देखा। उसे राविया से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक सेकंड में राविया के हाथों में अपना नाम ढूंढना शुरू कर दिया। आधे घंटे ढूंढने के बाद भी उसे नाम नहीं मिला। उसने जल्दी से गर्दन उठाकर राविया को देखा, जो अब बेड की हेडरेस्ट पर अपना सिर रखकर सो चुकी थी और वो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। उसने एक हाथ से अब भी अनंत के शर्ट को पकड़ रखा था, जैसे उसके छोड़ते ही उसका पति फिर से कहीं भाग जाएगा और उसे ढूंढना पड़ेगा। ये देखकर अनंत को हंसी आ गई। उसने प्यार से राविया को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों पर कम्फर्टर ओढ़ते हुए उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसका एहसास होते ही राविया ने भी उसे कसकर पकड़ लिया कि पल दोनों के लिए ही काफी आरामदायक था। अनंत को आज से पहले इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ था। शायद वो इस फीलिंग से अब तक अनजान था। अगली सुबह अनंत की आंखें किसी के बार बार दरवाजा खटखटाने से खुली। उसने कसम साकर आंखें खोली और फिर उठना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा हो। उसने हैरानी से नजरें घूमकर देखी तो ये उसकी प्यारी सी बीवी थी, जो बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके सीने पर चिपकी हुई थी। वो सोते बेहद ही प्यारी लग रही थी। राविया को देखते ही अनंत को रात की सारी बातें किसी फिल्मी सीन की तरह याद आ गईं और उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हम इसका नशा उतर जाएगा और अगर उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया तो मैं इससे क्या कहूंगा।
अनंत के चेहरे पर उम्मीद और परेशानी दोनों साथ साथ उतर आई थीं। उम्मीद इस चीज की कि हो सकता है राविया ने नशे की हालत में सच बोला हो कि वो उसे सच में पसंद करती है और पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती है, और परेशान इसलिए क्योंकि रात को उन दोनों के बीच जो प्यार भरे पल थे कहीं उनको राविया गलत ना समझ ले, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। उसने धीरे से राविया को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन वो उसे बिल्कुल अलग नहीं हो रही थी। तो वहीं बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि माधवी थी। वो चाहती थी कि वो सुबह सबसे पहले जाकर अनंत और राविया से बात कर ले, ताकि किसी को पता न चले रात को राविया ने नशा कैसे किया था, क्योंकि आखिरी बार राविया माधवी के साथ ही थी तो सबको माधवी पर ही शक होने वाला था।